समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। हलवा सवाल करे सबको निहाल करे, बाटेरी सच्चा प्यार मां छोटी छोटी
जी हाँ, आज तो अष्टमी का वो दिन है जब छोटी छोटी कन्याओं की नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। वे छोटी छोटी कन्याएं जिन्हें माँ दुर्गा का रूप मानकर उन्हें पूजा जाता है और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लिया जाता है।
Absolutely, today is Mahashtami, the one of the most significant days of Navratri and also Durga Puja. And today is 30th of September, and on this day, devotees worship Goddess Durga in her powerful forms, perform rituals and seek blessings for happiness, courage and prosperity. It is the day when devotees worship Goddess Durga and they do some rituals, and that is Kanya Pujan.
जी बिल्कुल ठीक है आपने तन्वी। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ एक और नई नवीली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और तन्वी खुराना। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
आई एम तन्वी खुराना, लाइक रवि कपूर हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, एंड वी बोथ वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आज सवेरे, एंड टिल 8 एएम वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस।
जी बिल्कुल, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। भारत और भूटान 4,033 करोड़ रुपए की कुल लागत से सीमा पार दो रेल संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कोकराझार गेलेफू और बानरहाट सामत्सी परियोजनाएं शामिल हैं। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये परियोजना भूटान के दो प्रमुख शहरों गेलेफू और सामत्सी को जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये दो परियोजनाएं असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बानरहाट में भारतीय रेलवे नेटवर्क से शुरू होंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन रेल परियोजनाओं में पूरा निवेश भारत द्वारा किया जाएगा। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की विदेश सचिव ओम पेमा चोरेन के साथ विचार विमर्श किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की और सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बातचीत की।
India's industrial production growth measured by the Index of Industrial Production, IIP, stood up at 4% on an annual basis in August this year. According to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, among the three major components of IIP, mining sector advanced by 6% in August. Electricity generation rose 4.1% and manufacturing added 3.8%. The corresponding growth rates of IIP as per use-based classification in August 2025 over August over 2024 stood at 10.6% in infrastructure or construction goods. Growth of 5.2% was registered in primary goods, 5% in intermediate goods, 4.4% in capital goods and 3.5% in consumer durables. Meanwhile, consumer non-durables saw a declination of 6.3%.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री सुरक्षा तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वचालित कार्रवाई प्रणाली को एकीकृत करने पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारत तटरक्षक कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे खतरों से रक्षा करने के लिए भारतीय तटरक्षकों को अपने प्रशिक्षण और उपकरणों में निरंतर सुधार करना होगा। रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदाओं के प्रबंधन में तट रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha on Monday graced the Seva Parv celebrations organized by Housing and Urban Development Department. During the event, LG laid the foundation stone for 60 projects for Amrut 2.0 worth 699.79 crore rupees. He lauded the efforts of Housing and Urban Development Department and Jammu Municipal Corporation for fostering inclusive growth and improving their infrastructure and services for the city's residents. The LG said our sustainable urban planning and execution on the ground is a bold roadmap for future cities. He further said, under the guidance of Prime Minister Narendra Modi, my mission is to ensure that no one should be left behind. We will ensure that marginalized are reached and included in development process for greater progress and prosperity. He also called for sustainable urban infrastructure and integration of smart technology to develop more livable and vibrant cities and to mitigate environmental challenges.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के बाद दो वर्ष पुराना गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की गई है। इसके अंतर्गत गजा एक गैर कट्टरपंथी आतंक मुक्त क्षेत्र होगा और अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। गजा के लोगों के लाभ के लिए इसका पुनर्विकास किया जाएगा। शांति योजना के अनुसार दोनों पक्षों के इस प्रस्ताव पर सहमत होने पर युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे।
U.S. President Donald Trump has announced a 100% tariff on all the movies produced outside the United States. The step signals President Trump's willingness to extend protectionist trade policies into cultural industries, raising uncertainties for studios that depend heavily on cross-border co-productions and international box office revenue.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार देशों आइसलैंड, लाइचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। श्री गोयल ने बताया कि विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ये समझौता पहले ही किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में श्री गोयल ने कहा कि अमरीका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली के साथ भी इस समझौते को लेकर चर्चा हो रही है।
England seam bowling all-rounder Chris Vokes has announced his retirement from international cricket. In a social media post, Vokes announced his decision saying that it's the right time for him to retire. Having featured in 217 games for England across all formats of the game since his debut in 2011, Vokes took a total of 396 wickets in addition to 3,705 runs with the bat. The all-rounder was a vital member of England's 2019 World Cup winning team, playing a key role with both bat and ball. He also added a T20 World Cup title with England to his name in 2022.
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा का संरक्षण पर्यावरणीय प्रयास के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और लाखों लोगों के जीवन रेखा से जुड़ा है। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल गंगा संरक्षण कार्यबल की 16वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री पाटिल ने कहा कि पिछले वर्ष कार्यबल के उठाए गए लगभग 80% मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।
And in the cricket, the ICC Women's ODI World Cup 2025 will kick off today with the opening match between hosts India and Sri Lanka at the Barsapara Cricket Stadium in Guwahati. The match will begin this afternoon at 3 p.m. The Indian women's cricket team will look to end a 47-year wait for their maiden International Cricket Council title. The 2025 Women's World Cup is the 13th edition of the 50-over cricket tournament featuring 8 teams: Australia, England, India, New Zealand, South Africa, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan. These teams will compete in 28 league matches in a round-robin format across 4 venues in India and 1 in Colombo. The much anticipated match between arch rivals India and Pakistan will take place on 5th of October in Colombo.
To ye the ab tak ke kuch mukhya samachar. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर। तो तन्वी, ये बताइए आप शुरुआत किस मेट्रो से कर रही हैं?
लेट्स बिगिन विद बेंगलुरु।
जी,
The Deputy Commissioner of Bangalore Urban District G. Jagdish has clarified that no ration card will be cancelled based on the data provided by the residents during the ongoing social and educational survey. Speaking to the media persons in Bangalore, he made it clear that there is no fear of cancelling the ration card based on the survey data. He added that the sole purpose of the survey is to collect social and educational data of backward classes and also other communities. The data will be useful to formulate schemes that will address social, educational and economic inequalities across the state. Mr. G. Jagdish also clarified that the participation in the survey is voluntary and there is no compulsion on their part to disclose caste-based information.
और दिल्ली की अगर बात करें तन्वी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित दिल्ली भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय का उद्घाटन नवरात्रि के अवसर पर किया गया है। इस कार्यालय की आधारशिला भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जून 2023 को रखी थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास और विरासत के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली भाजपा को एक नया कार्यालय मिला है। उन्होंने कहा कि 1980 में अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने 45 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि दिल्ली भाजपा की मजबूती पिछले दशकों में उसके असंख्य कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस कार्यालय के उद्घाटन के साथ देश में भाजपा कार्यालयों की संख्या 618 हो गई है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे।
And moving towards Chennai, the Tamil Nadu Agri-Business Fair at the Chennai Trade Centre shows how the state's farming traditions and native ingredients are being reimagined for a younger and globalised audience. Organised by the state's Department of Agriculture and Farmers Welfare, 168 stalls from 38 districts showcased a whole range of products from banana fibre saris and palm leaf manuscripts to honey cola and millet ice cream. Tamil Nadu Agricultural University Professor N. Anandaraj said, at first glance, this may look like just another exhibition, but it is about bridging farmers with consumers and showing how traditional products can be reimagined to suit today's tastes.
दिल्ली का ही एक और समाचार तन्वी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी के विकासपुरी क्षेत्र में दिल्ली सरकार के लगभग 1800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में केशवपुर फेज 2 और 3 में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, पल्ला में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण और करावल नगर में सीवर लाइन बिछाने जैसे कार्य शामिल हैं।
And about Hyderabad in Telangana state, the celebrations of Bathkhamma festival organized by the state government has set 2 new Guinness World Records last evening. The event has been held at the Sarur Nagar Stadium in Hyderabad. The 2 world records for its largest Bathkhamma floral decoration consists of about 7 tons of flowers and of 63.11 feet high and 11 feet wide. The second record for the highly synchronized performance by a large number of women, that is 1,354. The representatives of the Guinness World Records declared the performance as a world record and presented certificates to the State Tourism Minister Krishna Rao and Women Development Minister Ansuya Sitaka. Telangana Tourism Development Corporation Managing Director Valluru Kranthi said that the final count of women who participated was 1,354 and yes, it was accepted by the Guinness World Records. The Bathkhamma was built by around 300 workers with metal, bamboo and flowers and the structure took 72 hours to complete.
तन्वी, अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन के पनवेल रोहा खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के लोकोमोटिव परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जो रेलवे के 4000 किलोमीटर रूट नेटवर्क में प्रौद्योगिकी को शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परीक्षण 28 सितंबर को सोमात्ने, आपचा और जीते स्टेशनों के बीच किए गए। इसके साथ ही मध्य रेलवे अपने सभी 5 मंडलों मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर पर मार्च 2025 में कवच कार्य आदेश मिलने के 6 महीने के भीतर लोको परीक्षण पूरा करने वाला पहला क्षेत्रीय रेलवे बन गया है। और अब चलते हैं कोलकाता की ओर। विशुद्ध सिद्धांत के अनुसार आज शारदीय दुर्गा पूजा की महाअष्टमी है और अष्टमी पूजा सुबह 5:40 पे शुरू हो चुकी है। बेलूर मठ में कुमारी पूजा सुबह 9 शुरू होगी और इसके बाद संधि पूजा और अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और तन्वी के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
And if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all the three cities are expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. And about the temperature, Chennai will have the minimum temperature 26 degrees and maximum will be around 35 degrees. For Bengaluru, the minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 29 degrees. And for Hyderabad, the temperature will hover somewhere between a minimum of 22 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और तन्वी, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको पता है मेरा नाम रवि कपूर है। You know my name is Ravi Kapoor.
Right, I know that.
और तन्वी, आपको पता है आपका नाम तन्वी खुराना है। Your name is तन्वी खुराना.
And why are you talking like that?
अरे भाई तन्वी, आप पहले ये बताइए कि आपको मालूम है कि इस समय हम आज सवेरे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। Right now we both are presenting the program आज सवेरे।
This is so strange. Why are you talking in both the languages?
अरे भाई, मैं आज ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है जो हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम के पर्व पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। 1953 में स्थापित होने के बाद से ये दिवस FIT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवादकों की अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। 1991 में FIT ने आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विचार शुरू किया ताकि दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा मिले।
Absolutely. But you know what, Ravi, translations are not that easy.
जी.
We have proper professionals who translate one language to another.
मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं।
प्लीज।
जब 87 में मैंने ये आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग ज्वाइन किया था तो जो क्वेश्चन पेपर था वो 2 का था और उसमें ढेर सारा काम जो था वो ट्रांसलेशन का ही था।
ओह ग्रेट। एंड यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस पर्टिकुलर डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू पे ट्रिब्यूट टू द वर्क ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स व्हिच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग नेशंस टुगेदर।
थैंक यू। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को।
If we talk about the year 1989, INS Shalky, India's first indigenously built submarine, was launched in Bombay.
1992 में आज के दिन लॉरी बेकर ने 25 लाख रुपए का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावास पुरस्कार जीता था।
In 1996, Center gave its consent to Tamil Nadu government's decision to rename Madras as Chennai.
1996 में आज के दिन श्रीलंका के सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर A.T. अरियारत्ने को 1996 का गांधी शांति पुरस्कार मिला था।
In 1997, 24th Stock Exchange of India set up at Trivandrum.
1999 में आज के दिन भारत ने अपनी बहुलक्ष्य सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया था।
And in the year 2000, India's Priyanka Chopra won the Miss World Beauty Pageant.
और सन 2000 में आज के दिन सरकार ने डॉक्टर DPS सेठ को भारत संचार निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया था। और तन्वी, अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का, अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है अल्ताफ हुसैन हालिका, जिनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1837 पानीपत और निधन 30 सितंबर 1914 को। अल्ताफ हुसैन हाली का नाम उर्दू साहित्य में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे सर सैयद अहमद खान साहब के प्रिय मित्र और अनुयायी थे। हाली जी ने उर्दू में प्रचलित परंपरा से हटकर गजल, नज्म, रुबाइयां और मरसिया आदि लिखे, और अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं मुसद्दस ए हाली, यादगार ए हाली, हयात ए हाली, हयात ए जावेद आदि आदि।
And if we talk about this particular day, today is the birthday of Deepa Malik, an Indian para-athlete from Haryana. She is the first Indian woman to win a medal in Paralympic Games. She won a silver medal at the 2016 Summer Paralympics in shot put. In 2020, she was elected as president of the Paralympic Committee of India. And we have a small clipping by her where she is talking about her achievements. So let's hear that.
I realize the meaning of my name, Deepa. How can Deepa be afraid of darkness? And that's how sports became my calling. I became the first Indian woman to win a Paralympic medal. I felt proud to be the president of Paralympic India contingent too. I found my light. I found my let's end darkness moment.
Aur ab
Yes, we are talking about Deepa Malik, and she is a great name. So I would like to just say a few more things about her. She has won a lot of awards. She's a big name, and she has won the most important award, that is Padma Shri Award, and that was given to her by the former president Shri Pranab Mukherjee, and that was in 2017. A lot more awards are there in her kitty, be it Arjuna Award in 2012 at the age of 42 years, and then Haryana Karm Bhumi Award, President Role Model Award, Major Dhyanchand Khel Ratna Award in 2019, and a lot more. And yes, she is a biker, she's a sports person, despite being a not disabled, she has never given up her hopes. So I think all of us should get a message from
Gazab her. Gazab ki personality ke bare mein aapne itni achhi jankari di hai.
Absolutely.
Thank you so very much. Aur ab zikr patrakarita jagat ke ek पुरोगामी शख्सियत रामानंद चटर्जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 29 मई 1865 बांकुड़ा जिला बंगाल में और आपने इस दुनिया से विदा ली 30 सितंबर 1943 कोलकाता में। वे कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक, संपादक और मालिक थे। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तन्वी, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया, और इसके अतिरिक्त रामानंद चटर्जी ने अध्यापक और प्राचार्य के पद पर भी काम किया था।
And today is the death anniversary of Robert Kardashian, an American attorney and also a businessman. He gained national recognition as O.J. Simpson's friend and his defense attorney. In 1973, Robert was one of the co-founders of the trade publication Radio and Records, which he and his partners sold for a large profit back in 1979. And he also pioneered the idea of playing music between movies in theaters.
Yeah. और अब बात कर लेते हैं हिंदी की लोकप्रिय कवित्री और लेखिका रही सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1913 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और आपने इस दुनिया से विदा ली 30 सितंबर 1994 को। सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था। सुमित्रा कुमारी सिन्हा द्वारा मुख्य रचनाओं में शामिल हैं 1940 की विहाग, 1942 की आशा पर्व और 1954 की बोलों के देवता।
And today is the birthday of this singer. And let me just play this song, and I'm sure anyone can guess who this particular singer is.
जी.
Let's hear that song.
आँखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगे कहाँ? मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहाँ।
Yes, we are talking about nobody else but Shantanu Mukherjee, professionally known as Shan, an Indian playback singer, composer, actor and television host. And he has recorded songs primarily in Hindi, Bengali, Kannada and Telugu. He is known as the golden voice of India, and he is considered among the greatest playback singers of India. Yes, he is the recipient of 2 Filmfare Awards and also 3 International Indian Film Academy Awards. A lot of his songs are so popular, be it Musu Musu Haasi, Wo Ladki Hai Kaha, and Koi Kahe Kehta Rahe, and Dil Vil Pyar Vyar, Mere Saamne Wali Khidki Mein, a lot. The list is very long, and we have another track by him only, that is from 3 Idiots. Let's just play that.
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बना.
और अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं पंडित श्रद्धा राम शर्मा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 30 सितंबर 1837 जालंधर पंजाब में, और आपने इस संसार से विदा ली 24 जून 1881 लाहौर पाकिस्तान में. अब आप पूछेंगे तन्वी कि ये पंडित श्रद्धा राम शर्मा कौन है.
राइट
जी, तो पंडित श्रद्धा राम शर्मा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, लेकिन एक ज्योतिषी के रूप में उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो इनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली थी. संपूर्ण भारत में पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई जाती है. श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 में की थी. पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे. अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना और धार्मिक उत्साह जगाया था, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित एक उर्वर भूमि मिली. उनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं ओम जय जगदीश हरे आरती, सत्य धर्म मुक्तावली, शांतोपदेश, सीखन दे राजदी विधियां, पंजाबी बातचीत, भाग्यवती, सत्यामृत प्रभा आदि आदि.
And today is the birthday of Monica Bellucci, an Italian actress and model who began her career as a fashion model before working in Italian, American and French films. She has done a lot of movies, be it Dracula, The Apartment, Under Suspicion, Brotherhood of the Wolf, Asterix and Obelix, Mission Cleopatra, and yes, at the age of 50, Bellucci appeared in the James Bond film Spectre in 2015, becoming the oldest Bond girl in the history of the franchise.
और अब जिक्र कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 30 सितंबर 1922 कोलकाता में और आपने इस दुनिया से विदा ली 27 अगस्त 2006 में. आप हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने बहुत मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी भी अनदेखा नहीं किया.
महाशय नमस्कार.
गुड मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग. आपका शुभ नाम
वो क्या है?
योर नेम प्लीज.
माई नेम इज जेम्स डिकॉस्टा.
और हमें प्यारे मोहन इलाहाबादी कहते हैं. नए वाहन चालक.
क्या है?
नए ड्राइवर हैं. ड्राइवर. जरा गाड़ी की चाबी दीजिए.
ये गाड़ी नहीं चलेगा.
क्यों भाई?
इसकी डिफरेंशियल में लफड़ा है.
डिक्की तो ठीक है ना?
हाँ.
तो हम डिक्की से गाड़ी चलाएंगे. लाइए चाबी.
तो तन्वी समय कम है. ऋषिकेश मुखर्जी की मुख्य फिल्मों में बता देते हैं अपने श्रोताओं को शामिल हैं सत्यकाम, अनुराधा, आशीर्वाद, चुपके चुपके, आनंद, गोलमाल, अभिमान, नमक हराम आदि आदि. तो सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्मों की एक छोटी सी बहुत ही बढ़िया सी मेडली. चलते चलते आज का विचार कि सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले हाथों से अधिक पवित्र होते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और तन्वी खुराना को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.